ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विश्लेषक मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
भारत की कुल बिजली उत्पादन की क्षमता 452 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसमें अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा की हम बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अक्टूबर 2024 तक का आंकड़ा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बिजली की उत्पादन क्षमता अब हमारे पास 203 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो कुल क्षमता का 46% से भी अधिक है। दरअसल जो आंकड़े हमने अभी आपके साथ साझा किए, वही आज हमारी चर्चा का विषय है कि किस तरह भारत लगातार नवीकरणीय ऊर्जा के लिहाज से अपनी बिजली उत्पादन की क्षमता में इजाफा करता जा रहा है और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी निर्भरता को कम करता जा रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत में आपके साथ ये भी आंकड़ा साझा करना चाहेंगे कि जब हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के बढ़ने की बात करते हैं तो भारत में जो अग्रणी राज्य इसमें आता है वो है राजस्थान। और हम सीधे राजस्थान ही कार्यक्रम की शुरुआत में चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी जयपुर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे हम समझना चाहेंगे कि राजस्थान को लेकर जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है कि कौन सी वो प्रमुख योजनाएं, प्रोजेक्ट्स या पहल हैं जिनकी वजह से राजस्थान इस मामले में आगे आया है, संक्षेप में आप बताएं।
देखिए, राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक ऊर्जा की जो खपत होती है राजस्थान के अंदर पूरी, उसका 43% हिस्सा सौर ऊर्जा से लिया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टारगेट राजस्थान सरकार ने सेट किया है। यदि मैं बात करूं इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 18 गीगावाट के क्षमता को हमने पार कर लिया राजस्थान ने सौर ऊर्जा के उत्पादन की, और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है सौर ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में। और जो टारगेट है वो ये है कि अगले साल के अंत तक राजस्थान में 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है कि 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। यदि मैं बात करूं इसके साथ पवन ऊर्जा की, तो 4.5 गीगावाट क्षमता जो है उसको हासिल कर लिया है। और प्रदेश के इस साल में यदि इस साल के आंकड़े हम देखेंगे तो 40,000 मिलियन यूनिट हमने राजस्थान ने हरित ऊर्जा का उत्पादन है, जो यदि वर्ष 2019 और 2020 से तुलना की जाए तो उससे लगभग 3 गुना अधिक है। यानी ये समझा जाए कि प्रदेश में पिछले 4 साल में हरित ऊर्जा का जो उत्पादन है वो लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है उसमें। प्रदेश में यदि मैं एक और उल्लेख करना चाहूंगा कि अगले महीने ही राजस्थान राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है, और उससे पहले कई कंपनियों ने राजस्थान में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए एमओयू साइन किया है। और ये एमओयू भी जो मूर्त रूप लेंगे तो निश्चित रूप से और भी आगे कई सारी परियोजना लगेंगी।
बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़े। मुकुल जी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता है, बिजली उत्पादन क्षमता में वो लगातार बढ़ती जा रही है, 203 गीगावाट तक का आंकड़ा हमारे सामने आया है। अब हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम अपनी जो फॉसिल फ्यूल की क्षमता है उसको कम करें और हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है उसको बढ़ाएं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह से ये प्रगति हमारी हो रही है?
पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा श्रोताओं को कि इसमें नई चीज क्या है। देखिए, जब से सभ्यता आरंभ हुआ है तो लोगों ने लकड़ी जलाकर तापमान या रोशनी का प्रयास किया कि उनको साधन मिल जाए। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ ने तेल जलाया, किसी ने पानी की क्षमता को लेकर आटे को पीसा। पर उसके बाद हमने ये देखा है कि कोयला, तेल और गैस का ही प्रयोग किया गया और इन पदार्थों का इतना अधिक उपयोग और महत्व हो गया कि विश्व के ऊपर जिन देशों में ये साधन उपलब्ध थे उनका प्रभाव बढ़ा और आयात निर्यात में भी सबसे ज्यादा क्षमता इसी चीज की रही है। अब भारत में ना तो तेल है और ना ही नेचुरल गैस है, पर्याप्त मात्रा में कोला है पर तेल और गैस नहीं है। इसलिए अब आप देख रहे हैं कि 80% तेल और गैस का हम विदेश से आयात करते हैं और उस पर हम किसी और देश पर या अन्य देशों पर निर्भर हैं। ये किसी भी देश के लिए एक अच्छी नहीं है। ये तो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा कि अगर हमारे पास तेल और गैस के साधन नहीं हैं, तो हमारे पास सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साधन हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि अन्य बड़े देशों की तुलना में हमारे यहाँ सबसे अधिक सौर ऊर्जा का प्रभाव है। अधिकांश दिन वर्ष में सौर ऊर्जा मिलती है हमको, और इसीलिए राजस्थान में इसका प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर खेती भी नहीं थी, जल के साधन नहीं थे। इतनी बड़ी चीज सामने आई है कि हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, तो वहाँ पर हम इस सौर ऊर्जा को फैलाएं। अब हमने आगे देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी विकास की बढ़ोतरी होगी और लोग गांव से शहरों में आएंगे, तो उनको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, कि गाड़ियों की संख्या पेट्रोल से जो चलती हैं, गैस से चलती हैं, उनको कम करकर बिजली की गाड़ियों का प्रभाव ज्यादा किया जाए। आप देखेंगे कि अब सरकारी दफ्तरों में, बड़े शहरों में बिजली की गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।
और जो पर्यावरण का पक्ष आपने उठाया, उसी को लेकर मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने एक पक्ष तो ये उठाया जो आर्थिक पक्ष है, कि हमारा आयात दूसरे देशों पर कम होगा, फॉसिल फ्यूल से जो आयात हम करते हैं, लेकिन जो पर्यावरण वाला पक्ष है कि हमारा जो कार्बन एमिशन है वो भी इससे कम होगा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्रोत हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि 2030 तक लक्ष्य है कि हम जो एमिशन है उसकी तीव्रता में 45% तक की कमी लाएं, और जो गैर जीवाश्म इंजन से 50% क्षमता हम उसके मामले में प्राप्त करें, जो कि बिजली की क्षमता है। तो ये ऐसे लक्ष्य जब हम निर्धारित करते हैं, तो ये किस तरह से एक पूरा तंत्र को बदलने की क्षमता रखते हैं, जो एक ट्रांजिशन या एक शिफ्ट कह रहे हैं हम बिजली उत्पादन का, वो इससे कैसे बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है।
अभी तक ये विवाद रहा है विश्व भर में और विकासशील और विकसित देशों में बहुत बड़े पैमाने पर, कि हम आर्थिक विकास कैसे करें और आर्थिक विकास की दिशा में तेल या कोयले का उपयोग कम कैसे किया जाए। अभी तक जितने भी देशों में आर्थिक विकास हुआ है वो कोयला और तेल पर निर्भर रहे हैं। अब भारतवर्ष ने एक नई बात ये उठाई है कि ये हो सकता है कि हम विकास करें और जिस तरह से विकास पहले अन्य देशों ने किया है उसकी तुलना में हम एक नया रास्ता निकालें। दुनिया के किसी भी देश ने इस स्तर के विकास पर, इतनी बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी, खासतौर से सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया है। इसका सीधा असर ये होता है कि ना तो विकास पर तेजी में कमी आएगी और पर्यावरण के दृष्टि से हमारा कार्बन इमिशन भी कम होगा। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत ने एक नया कदम दिखाया है, भारत के वासियों को ही नहीं विश्व को, कि हमारा विकास हो सकता है और हम उन पदार्थों का उपयोग कम भी कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारी ग्लोबल क्लाइमेट पर असर हो रहा है।
आपने जैसा कि कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बहुत सकारात्मक छवि रखता है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, और एक आंकड़ा भी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ये एजेंसी कहती है कि भारत की जो 2024 की जो वार्षिक एक समीक्षा है उसके आधार पर विश्व स्तर में भारत नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चर्चा को हम जारी रखेंगे और हम सीधे चलते हैं गुजरात से। हमारी संवाददाता अपर्णा खुंट जुड़ रही हैं। अपर्णा, बहुत बहुत स्वागत है। और गुजरात राजस्थान के बाद वो राज्य है जो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। क्या कहना चाहेंगी अपर्णा इस बारे में, कौन से वो कारण हैं और कौन सी वर्तमान में अहम परियोजनाएं हैं जो गुजरात को रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आगे ले जा रही हैं?
अभी दुनिया में सभी देश जो है नवीनीकरण ऊर्जा को लेके बहुत ही ज्यादा गंभीर हुए हैं। इस लक्ष्य में बहुत ही आगे है गुजरात देश के अन्य राज्यों के कंपैरिजन में। 29 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है गुजरात में आज प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम देखें तो 54% जो है स्टेट में जो भी ऊर्जा पैदा हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रही है, जो की बहुत ही एक महत्वपूर्ण सिद्धि है। रिसेंटली भी रिन्यूएबल एनर्जी मीट जो हुई थी गांधीनगर में, उसमें भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो प्रतिबद्धता है वो दोहराई थी कि गुजरात का भी अपना एक लक्ष्य है 2030 तक गुजरात को 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अगर हम देखें कि सोलर एनर्जी की बात हो, विंड एनर्जी की बात हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो, तीनों में गुजरात बहुत ही आगे है। 2009 में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सोलर पावर को लेकर एक पॉलिसी, एक नीति शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे गुजरात में जो है रेसिडेंशियल कॉलोनीज में और ऑफिसेस में सोलर रूफटॉप का जो योजना है वो 2019 में गुजरात सरकार लेके आई थी। पिछले 5 वर्ष में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा बूम हुआ है। आज 5 लाख से ज्यादा घरों पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉल्ड है, और उसमें भी सूर्य घर योजना जो केंद्र सरकार की है उसमें भी गुजरात का जो योगदान है वो बहुत ही अहम है कि 3.5 लाख कंज्यूमर्स ने ऑलरेडी सोलर इंस्टॉल किए हैं इस योजना के तहत। तो देखा जाए तो जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2030 तक हमें जो 500 गीगावाट प्रोडक्शन करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, उसमें गुजरात बहुत ही ज्यादा एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
बहुत धन्यवाद अपर्णा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुकुल जी, जब हम एक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने की बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि हम पूरे तंत्र को कैसे आगे बढ़ाएं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। जैसे सरकार ने कई योजनाएं इस मामले में संचालित की, ग्रामीण स्तर पर हम पीएम कुसुम योजना जैसी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना को ले सकते हैं जो सोलर पंप की योजना है, बड़े स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे कार्यक्रम है जो ग्रीन हाइड्रोजन को देश में संचालित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, ऐसी तमाम प्रोजेक्ट्स और योजनाएं जैसे हम पीएलआई स्कीम की भी बात करते हैं जो पीवी मॉड्यूल्स पर सरकार ने जो एक इंसेंटिव देने की योजना बनाई, तो हर स्तर पर योजनाओं को अलग अलग तरीके से डिजाइन करना, उसे लागू करना कितना जरूरी है जिससे कि हम जल्द से जल्द देश में नवीकरणीय ऊर्जा से बनने वाली बिजली का जो लक्ष्य हमने रखा है उसको प्राप्त कर सकें।
हम ये देख रहे हैं कि इस धारा के अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हम एक पूरा ही बदलाव ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने सुना गुजरात में घरों की छतों पर बिजली का उत्पादन हो रहा है।
बिल्कुल,
इसका असर ये होता है कि जिस तरह से हम बिजली पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उस पर कम भार पड़ेगा। इसी तरह से खेतों में भी छोटे छोटे किसानों ने पंप लगाए हैं जिनको पानी निकालने के लिए, जिनको अभी बिजली की लाइन की आवश्यकता होती थी, कभी बिजली नहीं आती थी, वो भी सौर ऊर्जा के माध्यम से उस पंप को चला सकते हैं। अब आप इसको सोचिए कि इतने सारे छोटे किसान हैं हमारे यहाँ, अन्य देशों में, विकसित देशों में बड़े बड़े किसान होते हैं, बड़ी नहरें हैं, बड़े यंत्र का इस प्रयोग होता है, यहाँ छोटे किसानों को एक छोटे पंप के चलाने के लिए बिजली पर निर्भर होना पड़ता है। अगर उस निर्भरता से वो छूट पा सकता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, पर जो निर्भरता होती है वो खत्म हो जाएगी। और इससे सीधा असर सरकार को ये पड़ेगा, हम इसको पूरे तौर से जब देखते हैं कि बिजली की गाड़ियां फैल रही हैं दिल्ली में, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है।
हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के और स्रोतों की बात करते हैं, इनमें बायोमास, बायोगैस और बायोपावर जैसी ऊर्जा भी बहुत अहमियत रखती है, तो जो बायोपावर है उसकी कितनी अहमियत है?
मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा देश गाँव में बसता है, अभी भी लगभग 7 लाख गाँव हमारे देश में है और लगभग 50% लोग रोजगार के लिए आश्रित हैं। क्योंकि हमारा देश ग्रामीण अंचल में है, बसता है, कृषि उसकी प्रधान मुख्य काम करने की इकाई है, इसलिए हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा जानवर भी हैं, गाय भैंस और ऐसे 30 करोड़ के लगभग हैं। इसमें जो अहमियत है जैव ऊर्जा की, वो इसलिए है कि हमारी जो दैनिक आवश्यकता है वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं जैव ऊर्जा से। 2018 में हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी बनी, उस बायोफ्यूल पॉलिसी में एक नया प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने शुरू किया, सतत अभियान सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, और उसमें उनका ये कहना था कि IOCL, BPCL, HPCL मिलके 5,000 बड़ी बायोगैस प्लांट लगाएंगे और उन सबको बायोगैस को प्योरीफाई करेंगे और CNG की जगह पे, पेट्रोल डीजल की जगह पे वो हमारे व्हीकल्स में, ट्रैक्टर हो चाहे कार हो चाहे टू व्हीलर में यूज करेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि जो 200 गीगावाट का हमारा अभी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूशन है और 2030 तक हम इसको लगभग 500 गीगावाट करने वाले हैं और 2070 तक हमको जो कार्बन न्यूट्रल बनाना है देश को, उसमें सबसे बड़ी अहमियत बायो ऊर्जा की रहने वाली है। क्योंकि हम लोकली अवेलेबल रिसोर्स जिसको कहते हैं ग्राम ऊर्जा स्वराज का अभियान हमने PhD एक स्टूडेंट ने किया और वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने शुरू किया कि लोकली अवेलेबल रिसोर्स चाहिए, वो आपका जो भी ऑर्गेनिक रिसोर्स अवेलेबल है उनको यूज करके आप बिजली भी बनाइए, आप उससे गैस भी बनाइए बायोगैस, उसको प्योरीफाई करके पेट्रोल और डीजल की जगह यूज करिए, और जो कार्बन न्यूट्रल हमको बनाना है देश नेट जीरो पे, जो टारगेट अचीव करना है उसको हम पूरा कर पाए।
बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
धन्यवाद।
इसी नोट पर हम चर्चा को समाप्त करते हैं कि आगे आने वाले समय में नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से देखें और ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का भविष्य में इस लिहाज से उज्जवल नजर आता है कि जो प्रगति अभी हमारे सामने नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर हो रही है वो बहुत सकारात्मक नतीजे हमारे सामने पेश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए और इस विषय पर विस्तार से आपने विश्लेषण दिया।
अभी आप सुन रहे थे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विश्लेषक मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।